हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। धृति कुछ कह नहीं सकी। अर्णव ने अपनी बाँह से धृति का हाथ हटाया और पीछे मुड़कर वॉशरूम की ओर चला गया। धृति टकटकी लगाए उसे दूर जाते देखती रही। जैसे जैसे अर्णव उससे दूर जा रहा था, वैसे वैसे धृति की घबराहट और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। देखते देखते अर्णव धृति की आंखों से ओझल हो गया, पर धृति अब भी टकटकी लगाए उसी दिशा में देख रही थी। मिसेस धृति? धृति के कानों में एक अनजान सी आवाज पड़ी जिसने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। धृति ने आवाज की दिशा में नजरें घुमाई तो कई लड़के लड़कियां उसे घेर कर खड़े थे। सब हाई प्रोफाइल दुनिया से ताल्लुक रखते थे। उनका पहनावा, चेहरे पर झलकता रौब, एटीट्यूड सब आलीशान झलक रहा था। जहाँ लड़कियाँ उसे अजीब निगाहों से घूर रही थीं, उनके चेहरों पर रोष और नफ़रत जैसे भाव झलक रहे थे, वहीं लड़कों की निगाहें उसके बदन पर फिसल रही थीं और चेहरों पर अजीब से भाव थे, आँखों में लालसा झलक रही थी। ये सभी चेहरे धृति के लिए अनजान थे, पर उनकी अजीब तरह की घूरती निगाहों से धृति असहज महसूस कर रही थी, साथ ही उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी थी। धृति अभी कन्फ्यूज्ड निगाहों से उन सबको देख ही रही थी जब उन चेहरों की भीड़ से एक चांद सा दमकता चेहरा धृति के सामने आ गया। मिसेस धृति, यही इंट्रो दिया था अर्णव ने तुम्हारा, तो तुम शादीशुदा हो और अर्णव के साथ यहाँ इतनी बड़ी पार्टी में आई हो। एक मामूली सी पीए होकर तुम यहाँ हम सबके बीच खड़ी हो और अर्णव, जो किसी लड़की को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता, उसने पूरे वक्त में एक मिनट के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। जो अर्णव किसी लड़की की तरफ निगाहें उठाकर देखता तक नहीं, वो पूरे वक्त तुम्हारे साथ रहा, तुम्हारे बॉडीगार्ड जैसे तुम्हारा ख्याल रखता रहा। लगता है कुछ खास रिश्ता है तुम्हारा उससे। वो लड़की भौहें सिकोड़े उसे घूरने लगी। उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ छलक रही थी। धृति के प्रति शब्दों में कड़वाहट छलकने लगी थी। शायद ये खीज, ये गुस्सा इसलिए था क्योंकि अर्णव ने कभी उसकी ओर निगाहें उठाकर नहीं देखा था। उसे क्या, किसी लड़की को अपने आसपास भी नहीं आने देता था, पर आज वो सारा वक्त धृति के साथ था, जबकि उनकी नज़र में धृति एक मामूली सी पीए थी। और यही बात उसके गुस्से और चिड़ को और ज्यादा बढ़ा रही थी कि एक मामूली पीए को अर्णव इतना ध्यान दे रहा है। धृति तो आंखें बड़ी बड़ी किए कन्फ्यूज्ड सी उसे देखने लगी, क्योंकि उसकी बातें उसके सर के ऊपर से गुजर गई थीं। वो समझ ही नहीं सकी कि किस बात का गुस्सा और नफ़रत उस लड़की के चेहरे और आंखों में झलक रही थी। धृति को खामोश देखकर उस लड़की ने नफ़रत भरी निगाहों से उसे घूरा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, क्या जादू किया तुमने उस पर कि जो लड़का किसी लड़की को अपने आसपास भी भटकने नहीं देता, वो तुम्हें अपने साथ इस हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी में ले आया। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारी औकात है यहाँ हमारे बीच खड़े होने की। किसी झुग्गी झोपड़ी से आई मैनरलेस लो क्लास लोगों के लिए इन बड़ी बड़ी पार्टियों में कोई जगह नहीं होती, पर तुम अपनी औकात जानते हुए अर्णव के साथ यहाँ तक चली आई और वो तुम्हें अपने साथ ले भी आया। ये महंगे कपड़े, ज्वेलरी सब अर्णव ने दिए होंगे ना, क्योंकि तुम्हारी हैसियत तो इतनी भी नहीं कि इन महंगे ब्रांड का ख्वाब भी देख सको। शक्ल से तो बहुत शरीफ लगती हो, पर मैं तुम जैसी डबल फेस चालाक लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जो अपनी इसी मासूमियत और खूबसूरती का इस्तेमाल करके अमीर लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं और फिर उनका इस्तेमाल करके अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा करती हैं। और तुम भी अर्णव के साथ यही कर रही हो। तुम अर्णव की पीए बनकर उसकी जिंदगी में शामिल हुई, शादीशुदा होते हुए भी अपनी खूबसूरती के जाल में उसे फंसाया और अब उसके सहारे अपने सभी शौक पूरे कर रही हो। वरना तुम्हारा इतनी हैसियत कहाँ कि इतने महंगे ब्रांडेड कपड़ों, ज्वेलरी के सपने भी देख सको, इस हाई क्लास पार्टी में शामिल हो सको। खूब फायदा उठा रही हो अपनी खूबसूरती का और अर्णव भी तुम्हारी इस मासूमियत के जाल में फंस गया। वो लड़की धृति का अपमान करती जा रही थी, अपनी घटिया सोच और झूठे इल्ज़ामों तले उसके स्वाभिमान को रौंदती जा रही थी और धृति स्तब्ध सी आंखें बड़ी बड़ी किए बस उसे देखे जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किस बात का गुस्सा निकाल रही है वो उस पर। पहले तो धृति अचंभित सी उसे देखती रही, पर जब उसकी बातें धृति के बर्दाश्त से बाहर चली गईं, तो वो एकाएक उस लड़की की बात काटते हुए उस पर भड़क गई। है कौन आप? परेशानी क्या है आपको मुझसे? आप जानती क्या है मेरे बारे में? और ये कैसी घटिया और वाहियात बातें कर रही हैं मेरे बारे में? किसने हक दिया आपको मेरे करैक्टर पर सवाल उठाने का? घटिया हम नहीं, तुम हो। अमीर लड़का देखा नहीं कि अपनी अदाओं से उसे अपने जाल में फंसा लिया? वैसे ऐसा भी क्या है तुम में कि जो अर्णव नज़र भर मुझ तक नहीं देखता, वो तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहता? तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ मैं। मेरी खूबसूरती के सामने तुम कहीं नहीं ठहरती। जिसकी पार्टी में तुम आज हो, मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, करोड़ों की मालकिन हूँ। 75 नौकर मेरे आसपास रहते हैं। एक बार जो कपड़े पहन लूँ, दोबारा उन्हें छूती तक नहीं। जितने पैसे तुम महीने भर में कमाती होगी, उससे ज्यादा की मैं टिप दे देती हूँ। मेरे सामने तो तुम्हारी कोई औकात नहीं, पर फिर भी वो अर्णव मुझे कभी एक नज़र देखता तक नहीं, और तुम जैसे गवार दो कौड़ी की मिडिल क्लास लड़की को इतना ध्यान देता है। एक बार फिर वो लड़की अपनी सारी खुन्नस धृति पर उतार गई। अब की बार धृति को उसके सभी सवालों के जवाब मिल गए थे कि बिना जान पहचान के उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। उस लड़की ने धृति को नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर धृति पर उसकी बातों का कुछ खास असर नहीं हुआ। धृति हिम्मत दिखाते हुए उसके सामने तन कर खड़ी हो गई और उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए उसी के लहजे में बोली, ओह तो इसलिए तुम पागल हुई हो, क्योंकि वो तुम पर ध्यान नहीं देते और मुझे उनका पूरा ध्यान मिला। फिर तो चाहे मैं गरीब हूँ, पर तुमसे बेहतर हुई, तभी तो तुम्हें ठुकराकर उन्होंने मुझे चुना। और तुम जो मुझे अपनी औकात याद दिला रही थी ना, तो हाँ, मैं तुम्हारे जैसे अमीर परिवार से नहीं हूँ। पैसों का खुरूर मुझे विरासत में नहीं मिला। मैंने जो कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है। अपने बाप के कमाए पैसों पर ऐश नहीं करती। भले तुमसे सुंदर नहीं हूँ, इस हाई क्लास सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं मेरा, पर अच्छा ही है मैं तुम जैसे बदतमीज, घटिया सोच वाले और पैसों के घमंड में चूर लोगों की दुनिया से नहीं हूँ मैं, वरना तुम्हारे जैसी ही बन जाती। धृति से करारा जवाब पाकर वो लड़की गुस्से से तमतमा उठी। यू ब्लडी, उस लड़की ने गुस्से में धृति पर हाथ उठा दिया, पर इससे पहले कि वो चांटा धृति के गाल पर लगता, उस लड़की के बगल में खड़े लड़के ने, जिसका नाम विवान था, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कैम डाउन वृषा, तुम क्यों इस दो कौड़ी की लड़की पर अपनी एनर्जी बर्बाद कर रही हो? देखो तो सही, कितनी नाजुक है बेचारी, तुम्हारा थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसके गोरे गोरे गालों पर निशान पड़ जाएंगे। वृषा उर्फ वृषाली ने विवान की बात सुनकर घूर कर उसे देखा। विवान ने आंखों से उसे कुछ इशारा किया, जिसे समझते हुए वृषा के लबों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। वृषा ने एक नज़र धृति को घूरा और पीछे हट गई। उसके जगह अब विवान ने धृति की ओर कदम बढ़ाते हुए मुस्करा कर बोला,
धृति, नाम तो बहुत प्यारा और यूनिक है तुम्हारा, और ये गुरूर तो काबिले तारीफ है। मैं तुम्हारी इस अदा पर फिदा हो गया। वैसे मानना पड़ेगा, कुछ तो बात है तुम में। देखने में किसी से कम तो तुम भी नहीं, काफी खूबसूरत हो। रंग, फेशियल फीचर से लेकर बॉडी स्ट्रक्चर, फिगर तक सब कमाल है। तभी अर्णव तुम्हारे इस हसीन, दिलकश रूप और अदाओं पर फिदा हो गया होगा। वैसे अर्णव से कम तो हम भी नहीं, न पैसे में, न रुतबे ने, और न ही अपीयरेंस में। अगर चाहो तो एक मौका हमें भी देकर देख लो। उसने तो पहले कभी किसी लड़की से कोई रिश्ता रखा ही नहीं। बेचारा इस फील्ड में बिल्कुल नया है, कच्चा खिलाड़ी है, पर हम एक्सपीरियंस्ड हैं। एक मौका हमें देकर देखो, अर्णव से ज्यादा खुश रखेंगे तुम्हें, और हमारे साथ ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। हम तुम्हें उससे कहीं गुना ज्यादा संतुष्ट करेंगे। विवान ने एक बार फिर उसके बदन को कुछ इस प्रकार देखा, मानो आंखों से उसे स्कैन कर रहा हो, और हैवानियत भरी मुस्कान लबों पर सजाए धृति को चाहत भरी नजरों से देखने लगा। उसकी डबल मीनिंग बातों का मतलब धृति खूब समझ रही थी। उसे इन लोगों की घटिया सोच से जहां घिन आ रही थी, वहीं उनकी बातें उसके कोमल दिल पर लगे जख्म को नासूर बना गई थीं। आज एक बार फिर अर्णव के कारण धृति को एक बदचलन, चरित्रहीन लड़की की उपाधि दी गई थी। इतना ही नहीं, उसे ऑफर भी दिया जा रहा था। और ये सब बातें सुनकर जहां धृति का दिल खून के आंसू रो रहा था, वहीं चेहरा गुस्से और दर्द के मिले जुले भाव से सन पड़ा था। अपनी इतनी बेइज्जती धृति सहन नहीं हुई, और वो गुस्से में उस पर हाथ उठाने ही वाली थी कि वहां अर्णव की कठोर, रौबदार आवाज गूंज उठी, क्या चल रहा है यहां? अर्णव की आवाज़ सुनकर सबकी निगाहें आवाज़ की दिशा में घूम गईं। तब तक में अर्णव लंबे लंबे डग भरते हुए धृति के पास आ गया और तीखी नज़रों से सबको घूरने लगा। अर्णव की गुस्से भरी नज़रों को खुद पर टिके देखकर विवान ने तुरंत ही मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, मैं तो मिसेस धृति से कह रहा था कि अगर कभी जॉब बदलने का मन हो तो मुझे ज़रूर याद करे। एक बेहतर पोस्ट सैलरी के साथ सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा मिलेगी उसे मेरे पास। आखिर तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं। एक बार फिर विवान ने डबल मीनिंग बात कही और अजीब सी मुस्कान लबों पर सजाए लालसा भरी निगाहों से धृति को देखने लगा। जहां उसकी बात सुनकर धृति के चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए और उसने अपना चेहरा फेर लिया, वहीं अर्णव की तीखी निगाहों से भी कुछ छुप नहीं सका था। और विवान को इस तरह धृति को निहारते देखकर गुस्से से उसका चेहरा लाल हुआ और आंखों में जैसे खून उतर आया। माथे की नसें तन गई और बांह की मांसपेशियां उभर आईं। उसने जलती निगाहों से उसे घूरते हुए गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, थैंक्स बट नो थैंक्स, क्योंकि धृति कभी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगी। तुम्हारा एक्सपीरियंस मेरी काबिलियत के आगे कुछ भी नहीं, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। इसलिए अब दोबारा कभी मेरे स्टाफ को लालच देकर अपने तरफ करने की कोशिश भूलकर भी मत करना, वरना मुंह की खाने को भी तैयार रहना। क्योंकि तुम चाहे कुछ भी क्यों ना करो, पर न तो कभी मेरे किसी स्टाफ को अपनी पार्टी में शामिल कर पाओगे और न ही इस फील्ड में मुझे मात दे सकोगे। इसलिए बेहतर होगा कि अपनी औकात में रहो। अर्णव ने एक सेकंड में विवान को उसकी जगह दिखा दी, जिससे विवान की शक्ल देखने लायक थी। उसके इतने फ्रेंड्स के बीच अर्णव ने उसकी ऐसी बेइज्जती की कि विवान गुस्से से तमतमा उठा, पर अर्णव को कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई, बस उसे घूर कर रह गया। बदले में अर्णव ने भी उसे आंखें तरेर कर घूरा और फिर उसने धृति की कमर पर अपनी बाईं बांह को लगाकर उसे खुद से एकदम सटा लिया। धृति जो चेहरा फेरे खड़ी थी, उसने झिझक कर उसे देखा, पर अर्णव ने उसकी देखने की जहमत नहीं उठाई। विवान को देखकर वो कुटिलता से मुस्कुराया और घोर कर उसे देखा, जैसे उसे बता रहा हो कि धृति सिर्फ उसकी है, उस पर अपनी घटिया नजर डालने की हिम्मत भूलकर भी न करें। उसके बाद उसने विवान के बगल में खड़ी वृशाली को देखा और मुस्कुराकर बोला, एक्सक्यूज मी, नाउ आई नीड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद माई डार्लिंग, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। अर्णव ने उसके जले पर नमक छिड़का और धृति को लेकर आगे बढ़ गया। विवान और वृशाली दोनों गुस्से और नफरत भरी निगाहों से उन्हें घूरते रहे और फिर दनादन वहां से चले गए। अर्णव विला के बाहर आया और धृति को एक तरफ खड़ा करते हुए बोला, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ कार लेकर। धृति ने एक शब्द नहीं कहा, आंखों में आंसू भरे हुए थे और इतनी देर से जिन्हें वो बाहर आने से रोकने की कोशिश कर रही थी, आखिरकार वो आंसू उसके पलकों के बांध को तोड़ते हुए उसकी आंखों से छलक आए थे। कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसका अंदाज़ा लगा पाना बेहद मुश्किल था। अब भी विवान और पार्टी में मौजूद बाकी लड़कों की अजीब तरह से घूरती निगाहें उसे अपने बदन पर महसूस हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो निगाहों से ही उसके इज्जत को तार तार कर रहे हों। बाकियों से तो फिर भी किसी तरह खुद को बचा लिया था, पर विवान जिस तरह से उसे देख रहा था, धृति उस वक्त कैसा महसूस कर रही थी ये बस वही समझ रही थी। कितनी मुश्किल से उसने उनकी हवस भरी निगाहों का सामना किया था, पर अब वहां से आने के बाद भी उनकी लस्ट भरी निगाहें उसके बदन पर कीड़ों की तरह रेंगती महसूस हो रही थी। वो नजरें उसके मन को भेदती जा रही थीं। धृति का मन अब एक पल भी यहाँ रुकना नहीं चाहता था और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे अर्णव पर आ रहा था। उसकी हकीकत जानने के बाद भी वो उसे आखिर ऐसी जगह लेकर ही क्यों लेकर आया? जब जानता था कि यहाँ ऐसे लोग हैं तो उसे अकेला छोड़कर गया ही क्यों? क्यों नहीं बताया किसी को कि वो उसके पीए नहीं, वाइफ है? जो सच बताता तो क्या किसी की हिम्मत होती उसके तरफ गलत नजरों से देखने की? क्या तब इनकी इतनी हिम्मत होती कि वो उसके बारे में इतनी घटिया बातें करें? और इन सब सवालों का उसके मन ने सिर्फ एक जवाब दिया कि अर्णव ने सब जानबूझकर किया, क्योंकि यही तो चाहता है वो, उसे जलील करना, दर्द देना। जो हुआ उसके बाद धृति का मन बहुत आहत था और दर्द आंसू बनकर बहने लगा था। सीने में असहनीय दर्द उठ रहा था। अर्णव ने धृति को वहां रुकने कहा था, पर धृति की स्थिति अभी ऐसी थी कि ना तो वो एक और पल यहां रुकना चाहती थी और न ही अर्णव को देखना चाहती थी। इसलिए उसका इंतजार न करते हुए वो पैदल ही वहां से निकल गई। रात के करीब 10 बजे अंधेरी रात में अनजान सुनसान सड़कों पर धृति बस चली जा रही थी। कहाँ जाना था, कहाँ जा रही थी, इसका कोई एहसास ही नहीं था उसे। बस अपने दुखों में डूबी वो अनजान रास्तों को अपना बनाए उनसे अपना दर्द बांटते हुए आगे बढ़ रही थी। और उसका दर्द देखकर आज शायद भगवान का दिल भी भर आया था। उनकी भी आंखें पसीज गई थीं और आंसुओं के रूप में हल्की बूंदाबांदी होने लगी थी, पर धृति को इस वक्त किसी चीज़ का एहसास ही नहीं था। वो बस चलती जा रही थी, जाने ये रास्ते उसे किस मोड़ तक लाकर खड़ा करने वाले थे और कद इन का अंत होगा। कुछ देर बाद अर्णव कार लेकर गेट पर पहुंचा तो धृति को वहां न देखकर चौंक गया। धृति का क्लच वहीं गिरा था, पर धृति नदारद थी। उसने बाहर आकर क्लच उठाया, आसपास नजरें घुमाकर धृति को ढूंढा, पर धृति वहां होती तब तो उसे दिखती। हार कर उसने गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि कुछ देर पहले ही वो बाहर गई थी। अर्णव ने उसकी बताई दिशा में गाड़ी बढ़ा दी। इस वक्त उसके चेहरे पर तनाव के भाव मौजूद थे और माथे पर चिंता की सिलवटें उभर आई थीं। सीने में मौजूद दिल बेचैनी से धीमे धीमे धड़कने लगा था और सांसें भी डर और घबराहट के कारण थम थम कर चल रही थीं। स्टीयरिंग पर उसकी हथेलियां कसी हुई थीं और धीमी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए वो बेचैनी से आसपास सड़कों पर नजरें दौड़ाते हुए धृति को ढूंढ रहा था। क्या कहेंगे आप, क्या आज अर्णव गलत था और अब क्या होगा आगे?